और चल रहा है चारों अनुयोगों की सार्थकता। द्वादशांगशतम् भाव श्रुतम चाप्युपलब्धये चतुरनियोगाब्धौ में निष्मन्तो वगाह्यताम्। द्वादशांग श्रुत और भाव श्रुत की उपलब्धि के लिए चारों अनुयोग रूपी समुद्र में मेरा मन नित्य ही अवगाहन करता रहे, इस भावना के साथ प्रवचन निर्देशिका की इस अध्याय में पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, तरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चारों अनुयोगों की महिमा का बखान किया है। आप पेज नंबर 136 पर आ जाएं, जहां चरणानुयोग यानी जो आचरण सिखाता है। आचरण माने एक तो पैरों से चलना, एक चारित्र के द्वारा जीवन जीना, ये है आचरण। और उसमें कहा गया कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयतपना अर्थात चारित्र, ये तीनों ही युगपत जिनके पास नहीं है उनके मोक्ष मार्ग से विघटित ही हो जाता है। अर्थात सच्चे मोक्ष मार्ग को पाने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता होना आवश्यक है। इनमें से एक दो भी रहते हैं तो भी मोक्ष मार्ग घटित नहीं हो पाता। और आगे कहते हैं इस पंचम काल में भी चारित्र का महत्व देखिए। बरिस सहस्रेण पुरा जम कम हणई तेण कायेण तम संपई वरिषेण हो निज्जरियई हीन संहनने। भाव संग्रह ग्रंथ के अंदर कहा है कि बरिस सहस्रेण पुरा, हजारों साल पहले माने चतुर्थ काल में मुनि हजार साल तपस्या करके जितने कर्मों की निर्जरा करते थे, आज पंचम काल के अंदर हीन संहनने, हीन संगणन है, शरीर शक्ति कमजोर है, लेकिन इस पंचम काल में इन संगणन होने से जो साधु बनकर तपस्या करते हैं उनके एक वर्ष में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है जितने उत्तम संवनन से चतुर्थ काल में मुनि जन 1,000 साल में किया करते थे। माने अपनी शक्ति की उपयोगिता बताई है। अगर कोई छोटा बालक पायलट बन जाता है तो उसका विशेष नाम हो जाता है, क्योंकि उसने मैच्योरिटी आने से पहले ही पायलट बनना स्वीकार किया, हवाई जहाज को वो चला सकता है, इसलिए उसका विशेष नाम आ जाता है। ऐसे ही जब शरीर में शक्ति नहीं है तो भी तपस्या की जाती है, तो समझो विशेष बात है। इसलिए आज पंचम काल में भी आपके सामने जो संत विचरण करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनकी बात व्यर्थ नहीं है। 1 साल में हम लोगों की तपस्या से उतने कर्म नष्ट हो सकते हैं जितने 1,000 साल में नष्ट होते हैं। बस होना चाहिए निरतिचार, निर्दोष तपस्या। तो ये पंचम काल में चारित्र का महत्व तो बताया गया है। इस चरणानुयोग के बिना चारित्र के महत्व को कौन बता सकता है? तो व्रतों में लगे हुए अतिचारों का शोधन, गुरु विनय वैयावृत्य 16 कारण भावनाएं 10 लक्षण धर्म आदि का उपदेश चरणानुयोग ही तो देता है। व्रतों के भंग हो जाने पर उनमें पुनः उपस्थापना का आदेश इसी अनुयोग का है। प्रायश्चित विधि द्वारा व्रतों का प्रतिपादन करके दोषों का विशोधन यही अनुयोग करता है। कितने लोग डरते रहते हैं हम नियम नहीं लेंगे, कहीं टूट ना जाए, कहीं नियम से हम गिर ना जाए। तो आचार्य कहते हैं ऐसा सोच करके कभी भी मत बैठना, नियम जरूर लेना, कोशिश करना निर्दोष नियम का पालन हो। नहीं होता है, कोई दोष लग जाता है तो उसका प्रायश्चित भी करने का विधान करणानुयोग ग्रंथों के अंदर बताया गया है। द्रव्यलिंगी मुनि भी इस चारित्र के संपर्क से लोक में ही पूजे जाते हैं, जैसे कि पुष्पडाल मुनि व भवदेव मुनि पूजे जाते थे। श्रावक उन्हें आहार देने में कोई अंतर नहीं करते थे। अब आपको समझना है, द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं, भावलिंगी किसे कहते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो ये जानना है कि द्रव्यलिंगी मुनि कौन है, भावलिंगी कौन है, ये बात हम और आप नहीं जान सकते। ये तो सर्वज्ञ गम्य चीज है। यहाँ द्रव्यलिंग से मतलब है मिथ्या दृष्टि, और भावलिंग से मतलब है कि सच्चे मुनि। तो कोई कहे हम भावलिंगी है, बाकी सब द्रव्यलिंगी है, तो ये गलत है। आप अपने आप अपने को सर्टिफाइड नहीं कर सकते, केवल ही भगवान हमें सर्टिफाई। हम हो सकता है हम अपने को सम्यक दृष्टि कह रहे हो, और अंदर में कहीं मिथ्या दृष्टि हो। इसलिए ऊपर से जिनकी पास पिच्छी का मंडल है, उनको सबको आप भावलिंगी समझना, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी है, पंचम काल के अंत तक निर्दोष संत होंगे। मुनि, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका, श्रावक, श्राविका, ये सब निर्दोष होंगे, तो हमें विश्वास करना है। और हम अंतर नहीं कर सकते कि ये भावलिंगी है, ये द्रव्यलिंगी है। अगर कोई अपने को अपने टाइटल के साथ भावलिंगी लगाए, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भावलिंग और द्रव्यलिंग का परीक्षण करने का कोई थर्मामीटर हमारे आपके पास नहीं है। पिच्छी और कमंडल, यही कहा है कि मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात् निर्मुद्रो नैव मन्यते। ये मूलाचार के वाक्य हैं। मुद्रा, अगर आपकी भारतीय करेंसी जो है उसके ऊपर नहीं भारतीय बात छपी हो, तो आप कहेंगे उसमें सत्यमेव जयते लिखा रहता है, अशोक की लाट बनी रहती है। यानी भारत सरकार का जो चिन्ह निश्चित किया गया है, वह चाहे नोट हो चाहे सिक्का हो, मुद्रा पर जो मुद्रा अंकित है उसके द्वारा ही वह मुद्रा बाजार में मान्य है। वरना तो नकली नोट कितने लोग बना देते हैं, तो नकली नोट तो नहीं चलते ना। तो ये ऐसी मुद्रा होती है, जिन मुद्रा क्या है, जिसके पास मयूर पंख की पिच्छी है, जिसके पास काष्ठ का कमंडलू है, जो निर्ग्रंथ दिगंबर है। आप सबको ना संतवाद ना पंतवाद कभी नहीं देखना। देखो, इसमें भी ज्ञानमती माता जी लिखती हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि भी इस चारित्र के संपर्क से लोक में पूजे जाते हैं। जो आगम में कथानक आता है कि कोई पुष्पडाल नाम के मुनि थे, वे उनका मोह अपनी पत्नी में जागृत हो गया था, मन में सोचा करते थे, उनके गुरु ने जान लिया तो उनको किसी तरह करके संबोधित किया और उनको भावलिंगी बना दिया। तो जो लोग जान लेते हैं, अवधिक ज्ञानी होते हैं, अगर उनकी क्रियाओं से जान लेते हैं कि द्रव्यलिंगी माने मिथ्यात्व, इसके अंदर अभी मोह छिपा हुआ है, मोह ही है मिथ्यात्व ही है, तो उसको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। वरना बस अपना मस्तक कहाँ झुकना चाहिए, जहां पिच्छी कमंडल है, जहां निर्ग्रंथ मुद्रा है, जहां एक साड़ी धारण करने वाली आरिका है, जहाँ छुल्लक छुल्लिका पिच्छीधारी 11 प्रतिमाधारी साधु हैं, उन सब के सामने मस्तक झुकना चाहिए। हम नहीं निर्णय कर सकते कि ये सच्चे हैं कि ये झूठे हैं। तो इसलिए श्रावक उन्हें आहार देने में कोई अंतर पहले भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं, ना आगे कभी करना चाहिए। कुछ लोग आज, कुछ ये काल की परिस्थितियां ऐसी आ गई कि कुछ लोग संतवाद और पंथवाद में पड़ गए। लोग सोचते हैं बस हम जिनको मानते हैं वो सच्चे हैं, जो दूसरे मानते हैं वे झूठे हैं। नहीं, इसमें आचार्य शांति सागर महाराज, जो महान संत हुए 20वीं सदी के प्रथम आचार्य, जिन्होंने अनेकों बार सर्प के उपसर्ग को सहन किया, चींटियों के उपसर्ग को सहन किया, जिन्होंने मूलाचार पढ़कर श्रावकों की श्रवणचर्या आहारचर्या का हमें ज्ञान कराया, उनके शिष्य थे आचार्य वीर सागर महाराज, जिनसे दीक्षा लेकर आज ज्ञानमती माता जी ने अपने नाम को सार्थक किया है। ऐसे आचार्य वीर सागर महाराज हमेशा कहते थे, मेरा सो खरा नहीं हरा सो मेरा। सब विद्वानों को भी वे संबोधित करते हुए कहते थे, पूज्य माता जी बताती हैं कि आचार्य देव कहते थे कि मेरा सो खरा माने मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, इस धारणा को निकाल दो। खरा सो मेरा, जो अच्छा है, जो खरा है, जो समीचीन है, जो सम्यक है, वो मेरा होना चाहिए। यानी कि शास्त्र की बात को देखो, अगर हम परंपरा में बंधे हैं, हमारी परंपरा उत्तर की कुछ हो सकती, दक्षिण की कुछ हो सकती, पूरब पश्चिम की कुछ हो सकती है, लेकिन आचार्य देव निश्चल हुआ करते थे। वे आचार्य पुष्पदन भूतबलि, आचार्य वीरसेन स्वामी, आचार्य गुणधर देव, ये सब जो हुए हैं, इन्होंने धवला कसाय प्राभृत इन ग्रंथों के अंदर निश्चल निष्प्रय हो करके लिखा है, जो उसको मानना, वरना प्रांत में या पंथ में बटी हुई जनता उसके वाक्य को कभी हम समीचीन नहीं कह सकते। इसलिए चरणानुयोग का मतलब यह है आचरण की बात जो निष्पक्ष रूप से सिखाए। अगर कोई संत आपके नगर में है तो असली संतत्व का मतलब ये है कि हर संत के प्रति मन के अंदर श्रद्धा का भाव, एकदम श्रद्धा का स्रोत प्रवाहित कर दे। अगर किसी ने समाज में आग लगाने के लिए, समाज को बांटने के लिए, समाज में संघर्ष पैदा करने के लिए, विवाद कलह उत्पन्न करने के लिए संतवाद पंथवाद का झगड़ा किया तो समझो वो समीचीनता नहीं है। संत का मतलब ये है कि जो समाज में एकता कराएं, संगठन कराएं, जिन धर्म की प्रभावना करें, और पंचम काल के अंत तक मुनि होते हैं। इसलिए आप सब निर्ग्रंथ मुद्रा देखकर, इच्छिका मंडल देखकर नमस्कार करें, ये बात श्रावक के लिए चरणानुयोग ग्रंथ के अनुसार कही गई है। तो चरणानुयोग ग्रंथों के अंदर इन बातों को पढ़ करके हमें जानना है कि द्रव्यलिंगी कौन है, भावलिंगी कौन है, इनमें हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम किसी की पहचान नहीं कर सकते कि द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है। ना अपने साथ ऐसे टाइटल कभी लगाना चाहिए, क्या हम भावलिंगी हैं तो दूसरे सब द्रव्यलिंगी हैं क्या? आपको किसने ये सर्टिफिकेट दिया? आज पंचम का बड़े बड़े आचार्य हो गए, कुंद कुंद स्वामी हो गए, महावीर भगवान हो गए, जो तीर्थंकर थे उन्होंने भी कभी नहीं लगाया मैं भावलिंगी संत हूँ, कुंद कुंद देव के साथ कभी नहीं लगाया गया। आज आचार्य शांति सागर महाराज हुए, आचार्य विद्यासागर महाराज जी हुए, और अनेक आचार्य जो वीर सागर महाराज, शिव सागर महाराज, धर्म सागर महाराज, जिन्हें चतुर्थ काल के संत के समान हम लोगों ने आंखों से देखा है। राजधानी दिल्ली के अंदर सन 1974 में चातुर्मास हुआ, आप सब देखने वाले हैं कि लाल मंदिर से आचार्य श्री और पूरा संघ जब आहारचर्या के लिए उठता था तो दरियागंज के गली नंबर 1 बेदवाड़ा तक, एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर तक सारे साधु अपनी अंजलि रख करके, मुद्रा बना करके, और जब विहार करते थे, आहार के लिए जाते थे, ऐसा लगता था साक्षात चतुर्थ काल आ गया है। आज भी जो दीक्षाएं होती हैं, संत लोग जो संख्या बढ़ाते हैं, तो ये सब क्या है? पंचम काल के अंदर चतुर्थ काल का दर्शन है। इन कमजोर शरीरों से भी तपस्या की जाती है। अरे भैया, विद्यार्थी हैं, किसी से कभी कोई दोष लग गया तो भी गुरुजन प्रायश्चित देते हैं। ये सब बातें चरणानुयोग में पढ़कर गृहस्थ लोग अपने अष्टमूल गुणों का, अपने अणुव्रतों का निरतिचार पालन करें, संत लोग अपनी सीमा में रह करके मूलाचार के अनुसार 28 मूल गुणों का, 36 मूल गुणों का आचार्य जन, उपाध्याय जन 25 मूल गुणों का एक्स्ट्रा ये आचरण करते हैं, और अपने जीवन को अपनी सीमाओं में, आगम की सीमाओं में रख करके आचरण करके मोक्ष मार्ग को साकार करते हैं। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।